रामजी साहब, हम अपने इर्द गिर्द जब इजादात की दुनिया में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर इजादात और तहकीकी और तकलीकी काम जो है वो उन ममालिक या दुनिया के उन हिस्सों से आ रहा है जहाँ पर मजहब का इन्फ्लुएंस बहुत कम है, और वो खित्ते या हिस्से जहाँ पर मजहब का इन्फ्लुएंस इंफरादी सतह पर भी और इज्तमाही सतह पर भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम ओवरऑल डाटा भी कलेक्ट करें और डाटा अवेलेबल भी है और एक इंडेक्स बनाएं, तो हम जानते हैं कि जहां मजहब का इन्फ्लुएंस जितना ज्यादा है वहां पर तहकीकी तखलीकी और जिद्दत का मैयार उतना ही पस्त
कम।
है।
ठीक,
इससे मेरे जहन में और बहुत सारे दूसरे जहनों में एक तासुर पैदा होता है, वो तासुर ये पैदा होता है कि शायद मजहब जो है वो तहकीक तखलीक और जिद्दत की राह में एक रुकावट है। तो इस पे थोड़ी रोशनी डालिए, क्या ये वाकई ऐसा है कि ये सिर्फ ये एक ऐसी बात है?
मुझे 100% इत्तफाक है आपसे, सिर्फ एक लफ्ज की तब्दीली के साथ। मजहब का इन्फ्लुएंस नहीं, मजहबी पेशवाओं का इन्फ्लुएंस। यानी जिस सोसाइटी में मजहबी पेशवाओं को खसूसी हैसियत हासिल हो जाएगी, उसके लिए मखसूस इस्तलाहात ईजाद हो जाएंगी। जैसे कि आप अगर कदीम यूरोपी माशरे का मुताला करें तो यही कुछ हो गया था वहां पर। यानी मजहबी लोग ही पूरी सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे थे। वो बताते थे कि क्या हक है क्या बातिल है, उनकी ताबीर फाइनल ताबीर है। उनका एक पूरा का पूरा निजाम वजूद में आ गया था, उन्होंने तोड़ा उसको। यानी ऐसा नहीं हुआ कि मजहब के खिलाफ कोई बगावत हुई। आप अगर उस बगावत की तारीख पढ़ें, यानी जो रिफॉर्मेशन की तहरीक चली या उसके बाद रिनाइसेंस की तहरीक चली, तो उसमें असल हदफ मजहब नहीं था, असल हदफ मजहबी पेशवा थे, रिवायत थी। या हमारे यहां की ताबीर मुस्तार ले लें तो वो इजमा जो पापाइयत के पूरे इदारे में वजूद पजीर हो गया हुआ था। ये चीज है जिसको चैलेंज किया गया। आजादी यानी सोच की आजादी, फिक्र की आजादी, तहकीक की आजादी, राय देने की आजादी, इसको एक कदर के तौर पर कबूल कर लिया गया आहिस्ता आहिस्ता। उससे आपको ये तासुर होता है, हमारे यहां उस तरह का पापाइयत का निजाम कभी नहीं रहा, उस तरह का इस्तेदाद भी कभी नहीं रहा। लेकिन ये असर जरूर मौजूद है कि अगर आप मिसाल के तौर पर मजहबियात में कोई राय कायम करें या कोई नई बात कहें, या आप ये कहें कि कुरान मजीद का मतलब ये है, तो जो पहला सवाल आपसे होता है वो सवाल ये होता है, इससे पहले लोगों को ये बात क्यों नहीं सूझी? हमारे अकाबिर ने तो ऐसा नहीं कहा, ये हमारे असलाफ की राय तो नहीं है। ये जो सवाल आपके सामने आता है, ये सवाल एक खास तरह का जहनी और फिक्री इस्तेदाद पैदा कर देता है। अच्छा, अब उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा निकलता है कि आदमी के सामने एक दोराहा होता है, क्रॉस रोड पर वो खड़ा हो जाता है कि मैं अब पूरी सोसाइटी में अपनी ये हैसियत उर्फी खत्म करूं या जो चीज मैं महसूस कर रहा हूं वो कहूं। हर आदमी इस पुल सरात से नहीं गुजर सकता, बहुत थोड़े लोग होते हैं। यानी कौन आदमी जो है वो ये खतरा मोल ले कि ना उसका ईमान सलामत रहे लोगों की निगाह में, ना उसका दीन सलामत रहे लोगों की निगाह में, ना उसकी हैसियत उर्फी कायम रहे लोगों की निगाह, यहां तक कि जानो माल भी खतरे में आ जाए। तो ये जो पहलू है, ये असल में हमारी तवज्जो का हामिल होना चाहिए बुनियादी तौर पर, कि हम अपने मजहबी फिक्र में या अपने मजहबी उलमा में या मजहब पे काम करने वाले लोगों में वो चीज पैदा करें। ये हमारी खुशकिस्मती है कि उस तरह का कोई पापाइयत का इदारा, सवाए इसके मुसलमानों के, जाहिर आप जानते हैं दो बड़े गिरोह हैं, तो उनमें से एक गिरोह के यहां तो ये चीज मौजूद है कि उनके यहां किसी ना किसी को मर जाए तकलीद होना है या एक खसूसी हैसियत हासिल होनी है। बल्कि अगर कभी उनके यहां कोई सियासी निजाम भी कायम हुआ है तो उस सियासी निजाम में भी उलमा को खसूसी हैसियत हासिल होती है। लेकिन जो दूसरा बड़ा गिरोह है जिसको आप सुन्नी इस्लाम कहते हैं, उसमें ये चीज मौजूद नहीं है। तो दोनों जानिब इस बात की जरूरत है कि लोगों को यह बताया जाए कि यह तरीका जो इख्तियार किया गया है, यह तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खत्म कर दिया था। यानी अब इंसान आजाद है और उनको वो आजाद माहौल मिलना चाहिए जिसमें वो काम करेंगे। इसमें देखिए, लोग इसके खिलाफ बात क्या कहेंगे कि जी इससे लोग गलत बातें बयान कर देंगे और एक आदमी जो कंपिटेंट नहीं है वो उठ के बात कर लेगा, भाई क्या क्यामत आ जाएगी? एक कंपिटेंट आदमी उसकी गलती बातें कर देगा, बता देगा उसको। तो गलती बाजे करने का काम अगर इस्तदलाल से होगा, यानी आप दलील की बुनियाद पर बताएंगे कि ये बात आपकी गलत है, तो आप देखेंगे कुछ देर के बाद सही बात ही अपनी जगह पे कायम रहती है। बल्कि मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर आप इस्तदलाल को फैसला करने दें تو وہ صحیح بات کے قائم رہنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اگر آپ استدلال کو روکیں تو غلط باتوں پر اجماع کا امکان پیدا ہو جاتا ہے.